ओम शांति। आज सुबह से बार बार मन में एक कल्पना सी थी कि जैसी हमारी माइथोलॉजी कहती है वहां से तो हम इकट्ठे चले थे ना, फिर कहां क्या ऐसा हो गया कि हम एक से दो हो गए और दो से विरोधी हो गए। दैट इज समथिंग व्हाट हैज हैपन्ड विद मैन एंड वुमन देयर रिलेशनशिप। उस दिन बात कर रहे थे एडम और ईव ईडन गार्डन में थे, स्वर्ग में थे, इकट्ठे थे, एंजॉय कर रहे थे, सजा भी मिली दोनों को तो इकट्ठे ही आए ना, नीचे पहुंच गए। फिर कहां झगड़ा शुरू हुआ, कहां क्या ऐसा हो गया कि हम की बजाय मैं और तुम हो गए। हम दो थे, इकट्ठे थे, मैं हो गया, तुम हो गए, अलग अलग हो गए, और हालत इतनी हो गई, इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे के दुश्मन हो गए। एक छत के नीचे रहकर भी एक दूसरे पे यकीन नहीं रहा। कुछ ऐसी स्थिति वर्तमान की, भूल जाओ कि हम सतयुग से त्रेता द्वापर की बातें कर रहे हैं, नहीं वो नहीं बात कर रहा मैं, बिल्कुल ब्रह्मा कुमारी क्षेत्र से बाहर निकलकर आम दैनिक जीवन के अंदर, बाहरी दुनिया के अंदर, वहां की बात कर रहा हूं। कई बार लगता है और दुख भी होता है, क्या जीवन यही है। बाबा की बातें नहीं कहता मैं आज इस पीरियड में, नास्तिक तो नहीं हूं, बाबा का बच्चा भी हूं, लेकिन स्टिल काउंटर के दूसरी तरफ भी खड़ा होकर देखना है ना। हर वक्त काउंटर के इस तरफ खड़ा होकर बेचना ही तो नहीं है, कभी खरीदना भी तो है ना। तो लगता है कि अगर यही जिंदगी है, क्योंकि जहां भी ह्यूमन रिलेशंस की बात है वहां स्त्री और पुरुष के रिलेशंस की बात तो जरूर होगी ही, चाहे ह्यूमन रिलेशंस और कितनी भी तरह के हो ले, लेकिन जो फंडामेंटल रिलेशन है इंसान का, आदमी का, पुरुष का या स्त्री का, वो रिलेशन इनएविटेबल है, इनडिस्पेंसेबल है, होना ही होना है और उससे बचा भी नहीं जा सकता है। अगर हम चाहें कि ये रिलेशनशिप ना हो, ऐसा हो भी नहीं सकता है। तो इसीलिए कई बार लगता है कि अलग अलग समाजों में जो स्त्री के लिए कहा जाता है या दिखता है या जो दशा दयनीय दशा हो गई है, क्या पुरुष के मन में कभी ये प्रश्न नहीं आता होगा कि क्या स्त्री को खुश रहने का अधिकार नहीं है? Does she not have a right to happiness? Does she have no right to knowledge? Does she have no right to make choices? Does she have no right to feel a sort of respect within herself? Does she have no right to feel a sense of respect within the family? Is she meant only for household chores? Is she meant only to obey? Is she meant to be treated like a commodity? To be carried, purchased, sold and thrown away? Is she meant for all this? शायद ये प्रश्न झंझोड़ते तो हैं, अंदर से कई बार लगता भी है नहीं नहीं ऐसा नहीं, लेकिन वही बात होती है जैसे बाबा की क्लासों में, मुरली की क्लास में, बाकी में बाबा बहुत बातें कहते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है, मजा आता है, उमंग उत्साह होता है। बाबा कहता है उड़ो तो लगता है सच में उड़ रहे हैं, और बाहर निकलते ही लगता है पंख कहाँ है मेरे, पंख किसने काट दिए, बाहर निकलते ही वो हाल हो जाता है, पंख ही नहीं उड़ेंगे क्या। ब्रिटिश माइथोलॉजी में एक इकारस का नाम आता है, इकारस, ICARUS, इकारस एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, ए चाइल्ड कैरेक्टर जिसको पंख दिए गए, लेकिन वो पंख दिए गए मोम के पंख दिए गए, उसको उड़ सकता था उड़ो, लेकिन वो मोम के पंख थे, बेचारा भूल गया और सूरज के पास पहुंचने की कोशिश करने लगा कि मैं वहां तक उड़ जाऊंगा ना, पहुंच जाऊंगा ना, मोम थी पिघल गई, इकारस का क्या हुआ। तो हम आज के मॉडर्न इकारस तो नहीं है, बहुत उमंग रखते हैं, बहुत इक्वालिटी की बातें करते हैं, अखबारों में लिखते हैं, टेलीविजन मीडिया पता नहीं कितना कुछ करते हैं, अगर राइटिंग कंपटीशन हो, सिंगिंग कंपटीशन हो, डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट हो, तो दुनिया में शायद भारतीय फर्स्ट आएंगे विमेन एम्पावरमेंट पे या इक्वालिटी ऑफ जेंडर पे, और प्रैक्टिकेबिलिटी या वास्तव में स्थिति हम देखें, अपने अंदर झांक कर देखें, तो हम सब जानते हैं कहां हम खड़े हैं। यानी अंदर से हमें बहुत लगता है, कई बार अजीब भी लगता है, परेशानी भी होती है, दिल करता है कि कल जब सुबह उठे ना तो भारतीय समाज बदला हुआ हो, जहां स्त्री की दशा अंदर बाहर से, मन से, विचारों से, बोल से बिल्कुल बराबर हो। अब जब मैं ये कह रहा हूं बराबर हो, तो पलड़ा बराबर हो ना, तराजू का पलड़ा बराबर हो, ये तो नहीं ना कि बहुत सालों से पलड़ा इधर झुका हुआ था पुरुष की तरफ और अब हम उधर झुका दें, तो वो इक्वालिटी तो फिर भी नहीं है ना। सो इक्वालिटी नॉट विद ए वेंजियंस, मैं अक्सर कहा करता हूं, बदले की भावना से इक्वालिटी कभी नहीं आया करती। अगर किसी से छीन कर दूसरे को दे दिया जाए और कह दिया जाए अब तुम दोनों बराबर हो गए, हो नहीं सकती वो इक्वालिटी। यू मे हैव डिप्राइव्ड समबडी बट यू हैवंट एनरिच्ड द अदर, ये स्थिति अक्सर होती है, और स्त्री के बारे में तो भारतीय समाज में अक्सर ये है। तभी बहुत कुछ सालों से विमेन एम्पावरमेंट कैंपेन्स चलाई जाती हैं, सेमिनार्स किए जाते हैं, रिट्रीट्स किए जाते हैं, रैलीज की जाती हैं, भाषण दिए जाते हैं, स्लोगन्स बनाए जाते हैं, लेकिन क्या सच्चे मन से बोले हैं, बहने बोले, अंतर आया? जो ये समझते हैं कि वाकई ही बहुत अंतर आ गया है, अब काफी इक्वालिटी हो गई है, प्लीज रेज योर हैंड्स। जो बहने समझती हैं, भाइयों देख लो किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। ये ऐसे ही आइडियाज हैं जिन्होंने मजबूर किया कि हाथ ना खड़ा करें, दैट इज ओके। अब देखें आप क्या सोचते हैं भाई लोग, क्या स्त्री की दशा में परिवर्तन आया है, उसकी एक्सप्लॉयटेशन कम हुई है, क्या उसको राइट्स मिले हैं, और सच में उसकी परिवार में, समाज में, देश में, उसकी अवस्था में काफी सुधार है, जो ये समझते हैं हाथ खड़ा करें। देखिए देखिए, क्वालिफाई ना करिए, कंडीशन ना करिए, आइदर यस और नो, आइदर रेज योर हैंड और डोंट रेज योर हैंड। हुआ है, हुआ है, हुआ है, लेकिन भाइयों में भी बहुत कम लोगों ने हाथ खड़ा किया है, तो स्थिति बिल्कुल क्लियर है कि विमेन एम्पावरमेंट की जरूरत तो है। जब ब्रह्मा कुमारी जी हाथ नहीं खड़ा कर रही तो आप अंदाजा लगाइए आपके घरों में स्त्रियां कहां हाथ खड़ा करेंगी।
सर, आप बताएं ना कि हम अभी ब्रह्मा कुमारी का बात नहीं कर रहे।
हाँ हाँ,
हाथ
तो नहीं, मैंने राइट राइट राइट, बिल्कुल ठीक है। देखिए अंतर तो आया है ना, अंतर देखो आया ना, बोल रही है एक बहन सुने बहन जी, मैंने जब ये प्रश्न किया था तो मैंने कहा पहले इनसे पूछेंगे, मैं ये ऐसे ही किया था, मैंने ये नहीं कहा था सिर्फ ब्रह्मा कुमारी से पूछेंगे, मैंने तो कहा था इनमें, तो इनमें तो दोनों तरह की हैं, मैंने अलग से तो नहीं कहा पहले ब्रह्मा कुमारी से हाथ खड़ा करें। अब आप हाथ खड़ा करना चाहती हैं? नहीं, अब भी नहीं, तो फिर एक ही बात है ना चलिए चलिए, देखिए ये महसूस किया जाता है, जरूरत भी है, सच भी है, लेकिन मेरा मानना है, अब मैं अपनी बात, ये मेरा व्यू है, किताब का व्यू नहीं है, मुझे नहीं पता किताब क्या कहती है इस बारे में, मेरा ये व्यू है कि परिवर्तन हो रहा है, काफी हो रहा है, लेकिन उस परिवर्तन को रोकने में, अब ध्यान देना मेरी बात पर, उस परिवर्तन को रोकने में, उस परिवर्तन में बाधाएं पैदा करने में बहुत ज्यादा बहनों का भी हाथ है, बहुत ज्यादा उनका भी हाथ है। आप कारण समझते हैं, क्योंकि देखें कि जैसे मैंने कहा, इक्वालिटी नॉट विद द वेंचियंस। अब आप उस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, शायद किसी के साथ बीत भी रही हो या बीतती भी है या बीतने वाली हो, आई डोंट नो, लेकिन अगर किसी के बच्चे के लिए, लड़के के लिए आप लड़की ढूंढ रहे हैं और लड़की वाले आपसे पूछे कि जी हमें बेटे के बैंक अकाउंट की पासबुक देखनी है, क्यों? कारण इसलिए नहीं कि वो कितना धनी है या ना धनी है, इसलिए कि जो हर महीने तनख्वाह बैंक में उसके अकाउंट में आती है वो उसके पास रहती है या घर वाले निकाल लेते हैं, ये लड़की वालों की तरफ से डिमांड आती है कई बार। तो कहने का भाव ये है कि अब जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है वो भी बहुत बार एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, इट्स ए कॉन्ट्रैक्चुअल एसोसिएशन। जैसे किसी भी काम के लिए किसी फर्म के साथ आप 2 साल 5 साल 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वैसा ही कुछ होता जा रहा है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। हम बेशक विदेशों के उदाहरण देते हैं, लेकिन वो गलत है, नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी शहरों में बेशक थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो रही है, परिवर्तन आ रहा है, लेकिन रूरल एरियाज में, स्मॉल सिटीज में, कंजर्वेटिव फैमिलीज में, ज्वाइंट फैमिलीज में, इन सब स्थितियों में अभी तक स्त्री की अवस्था बहुत ही दयनीय है। आज भी आप देखेंगे, मुझे नहीं पता आप जिस स्टेट से आए हैं उस स्टेट का क्या हाल है, मैं आपको पर्टिकुलरली एक छोटा सा सीन बताता हूं, दिखाता हूं, हरियाणा का। अगर पति पत्नी कहीं जा रहे हैं बस पर, बस से उतरे, पति देव उतरे, देव पति देव उतरते हैं, उनके पास एक अटैची है, एक छोटा बच्चा है और एक बैग भी है। तो क्या होता है, वो सामान बस से उतारते हैं, पत्नी भी उतरती है, बच्चे को भी उठा लेते हैं और उसके बाद पति देव आगे चल पड़ते हैं। पत्नी बच्चे को उठाती है, सिर पर अटैची रखती है, कंधे पर थैला लटकाती है और पति देव के पीछे पीछे चलती है। ये गांवों में स्थिति, मजाक नहीं कर रहा हूं, ये दिस इज ए फैक्ट। यानी उस आदमी को अपनी उस पत्नी के साथ चलने में भी दिक्कत होती है जो उसका सामान भी और उसका बच्चा भी उठा के चल रही है। हरियाणा में आप दिल्ली से नेशनल हाईवे 10 पर, मैं क्योंकि मैं उधर ही जाता हूं, वैसे तो किसी हाईवे पे भी चले जाएं, नेशनल हाईवे पर चले जाएं आप, रास्ते में काफी सारे गांव आते हैं क्योंकि एनएच 10 पर दिल्ली से बाहर निकलते ही, बहादुरगढ़ आते ही हरियाणा शुरू हो जाता है और फिर लगभग 200 किलोमीटर तक हरियाणा है एनएच 10 में। आप कहीं सो जाएं, जाग जाएं, फिर सो जाएं, फिर जाग जाएं, दृश्य वही रहेगा, सीन वही नजर आता रहेगा। जैसे जैसे आप गांवों से गुजरते हैं आपको दिखेगा कि सड़क के पास दाईं तरफ बाईं तरफ मकान है, मकान के बाहर बड़ी सी चारपाई पड़ी है, चारपाई पर व्यक्ति लोग बैठे हैं, पुरुष लोग बैठे हैं, हुक्का लगा रखा है साइड पे। और थोड़ा सा आगे निकलेंगे आपको रेजिडेंशियल एरिया से परे की जगह दिखाई देगी, तो वहां बहनें माताएं दिखाई देंगी, कोई गोबर कर रही है, कोई खेत में काम कर रही है, कोई पानी भर के आ रही है, लेकिन पुरुष अपना लाट साहब कोई ताश खेल रहा है, कोई हुक्का पी रहा है। यानी जानवर की देखभाल करना, भैंस है उसका दूध निकालना, उसकी सफाई करना, ये बहनों का काम है, स्त्रियों का काम है, पुरुष का काम नहीं है। आप सोचते होंगे पुरुष खेत में काम करते हैं ना, बड़ी मेहनत करते हैं, नहीं, वो सिर्फ बोते हैं और काटते वक्त जो है फसल उठाते हैं, बीच में जो फसल की देखभाल के लिए खेतों में काम करना पड़ता है फिर स्त्री करती है, फसल कटवानी है फिर स्त्री कटवाती है, दाना निकालना है फिर स्त्री करवाती है, और सबके बाद रात को शाम को घर का खाना भी तैयार करना है, बच्चों को भी देना है, वो सब कुछ करना है। और उसके बाद भी कहा जाता है स्त्री करती क्या है। दैट इज द पैथेटिक स्टेट ऑफ वुमन इन ए स्टेट विच क्लेम्स टू बी एट नंबर 2 सो फार एज द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री इज कंसर्न्ड। और फर्स्ट नंबर गोवा को बोलते हैं, गोवा वैसी छोटी सी स्टेट है, उसका पर कैपिटा क्या गिनना। तो भारत का सबसे रिच अमीर राज्य जो है हरियाणा, उसमें स्त्री की ये हालत है। तो कहां कहां इक्वालिटी है। सिर्फ ये दिखा देना कि कॉलेज में लड़कियां जाती हैं, दफ्तरों में लड़कियां जाती हैं, बैंकों में लड़कियां काम करती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दीज आर जस्ट एक्सेप्शंस। सो स्त्रियों की दशा जो है, प्रॉब्लम क्या है, कहां स्थिति बिगड़ती है। सबसे पहली बात आती है जब हमारे समाज के अंदर पैट्रियार्कल सोशल एटीट्यूड है, पैतृक, पुरुष प्रधान है ना हमारा देश, पुरुष प्रधान है और वहां सिर्फ पुरुष की ही बात चलती है। इसीलिए स्त्री के लिए क्या है, उसको ध्यान रखा जाता है कि वो पॉलिटिकल नॉलेज, सोशल पावर, पॉलिटिकल पावर, अवेकनिंग, ये ना आए उसमें किसी भी तरह से। ध्यान रखा जाता है स्त्री इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट ना बने। और जितनी भी स्त्रियां काम कर रही हैं, करती हैं, आप अपने घरों में भी देख लें, कितनी स्त्रियों को आपने जो प्रोफेशनल हैं दफ्तरों में स्कूल्स कॉलेजेस में बैंकों में ऑफिसेज में काम करती हैं महीने की तनख्वाह आती है कितनों को अलाउ कर रखा है कि वो अपना इंडिपेंडेंट अकाउंट रखें और अपनी मर्जी से खर्च करें कितनों को अलाउ किया है हमने अगर हमने कोई कंसेशन भी उनको दिया है ना तो हमने उनके साथ ज्वाइंट अकाउंट खोला है उनको तसल्ली देने के लिए अकाउंट में आपका नाम है ना आपका नाम डाल रखा है ना ज्वाइंट अकाउंट है सो ताकि आप अपनी इनकम तो उसमें डाल सके निकाल मैं सकूं ज्वाइंट है ना हमारा आप अपनी इनकम डालते रहे मैं निकालता रहूंगा होता रहेगा खर्च चलता रहेगा ना घर का घर गृहस्थी का खर्च तो चलाना है यानी ये स्थिति हमने हाँ This is cooperation also. This is cooperation. Forced cooperation. From her side, it is cooperation. And from my side, इसको क्या कहेंगे? From my side, suppression, exploitation भी क्या? Suppression है ये. यानी, अगर कभी किसी स्त्री ने कह दिया, मैंने पीछे एक रिसर्च में, मैंने क्वेश्चनेयर तैयार किया और उसमें मैंने यही पूछा था काफी सारी स्त्रियों से जो वर्किंग हैं कॉलेजेस में लेक्चरर्स लगी हुई हैं तो मैंने उनसे कुछ प्रश्न किए उनमें से एक ये भी था कि क्या आप अपनी मर्जी से घर की कोई चीज खरीद सकती हैं जैसे फ्रिज है एसी है घर के लिए है वो अपनी मर्जी से खरीद सकती हैं मोस्टली द आंसर वाज नो नहीं पति चाहेंगे तो खरीदेंगे हम अक्सर यही जवाब मिलता है इसी तरह से पूछा कि अगर आप अपने बच्चों की एजुकेशन के बारे में डिसाइड करना चाहें कि बच्चों को किस तरह की एजुकेशन दिलाई जाए या एजुकेशन में उनको किस फील्ड में ले जाया जाए डू यू हैव एनी से अगेन द आंसर वाज नो और एक प्रश्न ये था कि अगर आपके पति शहर से बाहर गए हुए हैं और उसी शहर के अंदर ही आपके इनलाज रहते हैं फादर इनलॉ मदर इनलॉ तो क्या आप घर के कामों के लिए पति की उपस्थिति के बिना और बिना इनलॉज को बताए हुए क्या आप बाहर जा सकती हैं बाजार जा सकती हैं एक्सकर्शन के लिए घूमने के लिए जा सकती हैं दुकान से चीज तो लानी पड़ेगी ना आसपास और वो भी नियरेस्ट से लानी है अपनी मर्जी से मैं जाऊं थोड़ा घूम आऊं सैर करे आऊं पति देव यहां नहीं है तो बाहर भी नहीं निकले हैं ना ना नो नो यू आर नॉट परमिटेड और अगर आप गए तो शाम होते होते आपके सामने एक प्रश्न होगा किससे पूछ कर गई थी कहां गई थी कौन साथ था हा? वो वही तो बात है हाँ? वो तो वही बात है ना क्यों गई थी ना वो तो हो गया ना सो दैट इज आवर सोशल एटीट्यूड और फिर हम कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं हमारा समाज पढ़ा लिखा है और हम इक्वालिटी की बातें करते हैं चलिए देखते हैं इस इक्वालिटी में क्या क्या हर्डल्स क्या क्या आती हैं क्या क्या दिक्कतें क्यों ऐसी हर्डल्स आती हैं पहली बात तो यह है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो है माइज़ोगाइनी यानी द हेट्रेड ऑफ विमन स्त्री से घृणा करना यह एक नेचुरल सा बन गया है माइज़ोगाइनी आई मीन MISOGYNY माइज़ोगाइनी दैट इज कहीं किसी जगह पर पुरुष से घृणा की गई स्त्री से घृणा जन्म से लेकर घृणा शुरू हो जाती है पैदा क्यों हुई ये खर्च क्यों किया घर में लड़का और लड़की हैं तो पहले लड़के पर करो बच जाएगा तो उस पर कर देंगे खाने पीने के मामले में भी पहले बेटे को दो बाद में बेटी की देखेंगे बचेगा ऑफ कोर्स तो ये हमारी एक अप्रोच है यानी हमने डिस्टॉर्शन कर दी अपने स्क्रिप्चर्स की भी हमारे जो शास्त्र हैं उसको भी हमने जो है डिस्टॉर्ट कर दिया है शास्त्रों के अंदर चाहे स्त्री की अवस्था कितनी भी अच्छी हो, फिर हमने उसकी इंटरप्रिटेशन बहुत अपने ढंग से दी है, कहीं उसको द्रौपदी बना दिया, कहीं उसको सीता बना दिया, और बेचारी हेल्पलेस बेचारी, दैट इज व्हाट शी इज। सो वो बेचारी बन के रहती है पैदाइश से लेकर मौत तक, और फिर मौत भी क्या उसको कहा जाता है, उसके बार बार उसके संस्कारों में ये बात भर दी जाती है कि आप तब तक जो है लकी हैं, अच्छी हैं, खुशकिस्मत हैं, जब तक आपका पति जिंदा, पति देव जिंदा है, पति देव जिंदा है। और अगर आपका पति आपसे पहले मर जाता है तो आप बदकिस्मत हैं। सो इसका मतलब ये है कि अगर उस बेचारी को कई दिन जीना है उसके बाद, तो वो बदकिस्मत होकर जिएगी। और बहुत सारे भारतीय रिवाज हैं, आप जानते होंगे कि ऐसे रिवाज, खास तौर पर विवाह के अंदर बहुत सारे ऐसे रिवाज हैं कि ये फोर्स किया जाता है कि विधवा उस लड़की के सामने ना आए, एक विधवा उस लड़की के सामने ना, चाहे वो उसकी मां भी क्यों ना हो, बहन भी क्यों ना हो, भाभी भी क्यों ना हो, लेकिन वो नहीं, उस लड़की के सामने नहीं आना चाहिए। कितना प्यार हो, कितनी सेवा की हो, लेकिन विवाह के सामने वक्त उसके सामने, यानी एक विधवा उस लड़की को नजर नहीं आनी चाहिए। मर पति गया कसूर पत्नी का है क्या? अरे भाई तू शराब ना पीता, झगड़े ना करता, ना मरता, ठीक सी बात है ना? अरे मरा तो वो, उसको कोई नहीं कहता, उसके ऊपर तरस है, बेचारा मर गया, देखो तो। अया सिस्टर वॉन्ट टू आस्क? नो, ओके, आई थॉट यू वॉन्टेड। सो देखिए, उसको इस तरह से बदकिस्मत कह के ट्रीट किया जाता है। और वो जैसे हम जानते हैं, पहले शुरू में भी कह रहा था, शी इज ट्रीटेड लाइक एन ऑब्जेक्ट, एक वस्तु मात्र है ना, खरीद लिया, खिलौना कह लें उसको, खिलौना फिर भी बेटर है मैं समझता हूं। खिलौना कुछ समय आपका मनोरंजन तो करता है, खिलौना आपका मनोरंजन तो करता है, वस्तु तो आपकी दया पर है, आप जहां चाहें रख दें, जैसा चाहें तोड़ दें, फेंक दें, जो मर्जी ट्रीट करें ना उसको आप, वो तो होता है ना। यानी आप ये देखें, आप पुरुष भाई लोग, पता नहीं भगवान ने ऐसा, मैं कई बार कहता हूं अन्याय ऐसा क्यों किया, कि भाई लोग तो किसी भी से, लड़की से, किसी स्त्री से बात करें, उसके साथ घूमें, कुछ भी करें, और अगर स्त्री किसी अनजान पुरुष के साथ दो मिनट खड़ी है, या वो हंस पड़ी है, या दोनों मुस्कुरा पड़े हैं, तो बेचारी के लिए घर जाना मुश्किल हो गया अगर पति ने देख लिया, या उससे भी बढ़कर अगर उसकी सास ने देख लिया तो। मैं, मेरे को रॉबर्ट ब्राउनिंग की बहुत बहुत मशहूर उसकी एक पोएम है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और नाम था उसका माई लास्ट डचेस, आप में से कईयों ने पढ़ी होगी, ड्यूक और डच, डचेस यानी क्या कहते हैं, नवाब और उसकी पत्नी, कुछ भी कहें आप उसमें। सो द ड्यूक एंड द डचेस, डचेस की डेथ हो गई, डचेस की डेथ हो गई, और कोई आया उस ड्यूक को पुनः विवाह का ऑफर लेकर, और ड्यूक जो है आने वाले मेहमान को अपने घर दिखा रहा है, और दिखा रहा है तो वहां दीवार पर एक जगह उस डचेस की पेंटिंग बनी हुई है, और ड्यूक ये सारी जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है सिर्फ उसी पिक्चर के बारे, उसी के बारे में ही है, उसके बाद वहीं रुक जाता है। वो उसको कहता है, लुक, दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। फिर डिस्क्राइब करता है किसने बनाई, लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, यानी लगता है कि जैसे दीवार पर बैठी है, खड़ी है, इतनी जिंदा तस्वीर बनी हुई है। फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कहता है, जो बात मैं कहना चाहता हूं वो लाइन, She smiled, no doubt, whenever I passed her. अच्छी थी ना, मैं जब भी उसके सामने से गुजरता वो मुस्कुराती थी. She smiled, no doubt, whenever I passed her. But who went without much the same smile? अब मेरे सामने तो मुस्कुराती थी, लेकिन जो कोई गुजरता उसके साथ भी मुस्कुरा के बात करती थी. She smiled, no doubt, whenever I passed her. But who went without without much the same smile? This grew. I gave commands. Then all smiles stopped together. ये पांच शब्द, then all smiles stopped together, Browning के इस पर रिसर्च तक हो गई. Browning ने ये सिर्फ पांच वर्ड में उस ड्यूक का पूरा करेक्टर छाप दिया इसके अंदर. This grew, ये आदत बढ़ती रही. I gave commands. अल्टीमेटली क्या हो, मैंने आदेश दे दिए ना. Then all smiles stopped together. फिर हमेशा के लिए वो मुस्कुराहट खत्म हो गई. Means I got her killed. तो ये पुरुष है, ये पुरुष है. वो खुद सेकंड मैरिज के लिए तैयार खड़ा है और बड़े गर्व से आने वाले व्यक्ति को बता रहा है जो अपनी बेटी या किसी लड़की का रिश्ता लेकर आया उसके पास. उसके बाद भी गर्व से कह रहा है, देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर बिकॉज आई गेव कमांड्स. ये हमारी स्त्री की दशा बना दी हमने. ऑब्जेक्ट नहीं तो और क्या है, यानी हमने उसको सिर्फ सेंसुअल प्लेजर्स के लिए इस्तेमाल किया, काम वासना के लिए हमने उसको इस्तेमाल किया. उसके अलावा उसकी कोई वक्त नहीं, कोई कीमत नहीं उसकी. ये स्त्री है हमारे लिए. सो हेट्रेड ऑफ वुमन तो है ही, साथ ही सोशल एटीट्यूड है. सोशल एटीट्यूड बायोलॉजिकली वीक है, ये सोशल एटीट्यूड है. लेकिन पुरुष ये भूल जाता है कि जिस दिन स्त्री उठी उस दिन तुम खड़े तो नहीं रह सकोगे. यानी ये हम पुरुषों की खुशकिस्मती है कि स्त्री उठी नहीं है अभी तक. जिस दिन उठी हम नहीं खड़े रह सकेंगे, फिर या तो हमें बैठना होगा या झुकना होगा. ये नहीं कि हम अपनी टांगों पर खड़े होकर अहंकार भी करते रहेंगे, नहीं हो सकता. उसको बता दिया गया विमन को, तुम स्त्री हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वहां नहीं जा सकती, तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे में इतनी शक्ति नहीं तुम किसी को अपोज कर सको या किसी का सामना कर सको. ये भर दिया हमने उसके मन के अंदर. हालांकि हम जानते हैं, हम पुरुष के तौर पर हम जानते हैं, अंदर ही अंदर हम जानते हैं, स्त्री वो सब कुछ कर सकती है जो हम करते हैं और हमारे से भी कहीं ज्यादा कर सकती है, और वो जो कर सकती है हम वो नहीं कर सकते, ये हम जानते हैं. घर के अंदर दो दिन के लिए अपना रोल बदल लीजिए ना, आप स्त्री का रोल करिए दो दिन के लिए, सिर्फ दो दिन के लिए, और दो दिन उसको पुरुष का रोल करने दीजिए. करें थोड़ा सा, देखें तो क्या होता है, कैसे हम निभाते हैं, निभा पाते हैं. लेकिन उसके बावजूद भी हम समझते हैं नहीं नहीं, ये तो ऐसा नहीं हो सकता है. यानी हमने ये नहीं कभी सोचा कि वो कितना कुछ करती है. और उसके बाद भी हम कहते हैं अगर तो वो होम मेकर है, शुक्र है हमने उसके लिए, पहले हमने शब्द लगाया हुआ था हाउस वाइफ. यानी उसके लिए तगमे भी हमने ऐसे दे रखे हैं कि वो उसको नीचे गिराते रहे. अब आपने कह दिया ना हाउस मेकर है, होम मेकर है, वो घर बनाने वाली है, वो भी इस डर से कि जब इक्वालिटी देख रहे हैं ना लोगों की तो कहीं हमारे ऊपर ना आ जाए आंच, तो उसको होम मेकर कहो. फिर कुछ उसको तसल्ली, देखो हम तुम्हें कितना आदर दे रहे हैं ना, तुम्हें ऊंचा उठाया ना, तो वो एहसान माने हमारा, फिर उसको हम दबा सके, झुका सके, देखो कितना आदर दे रहे हैं तुम्हें, होम मेकर का और क्या कहेंगे. फिर हम कहते हैं इससे ज्यादा क्या चाहती हो, सर पर बैठोगी. सो कभी हमने ये सोचा कि वो घर का काम करने वाले कोई छुट्टी नहीं मांगती, आपको दफ्तर में हफ्ते में एक छुट्टी ना मिले तो आप दूसरे दिन अपना अपोजिशन लेकर पहुंच जाते हो, यूनियन लीडर खड़े हो जाते हैं, स्ट्राइक्स हो जाती हैं, गजटेड छुट्टी आती है, ये हमारा अधिकार है, हमें छुट्टी चाहिए, मेडिकल लीव्स दी हुई है सरकार ने, कैजुअल लीव्स हैं, अर्नड लीव्स हैं, जब भी चाहे लीव ले सकते हैं, जब भी चाहे। लेकिन स्त्री बेचारी तो आपकी परमिशन से भी लीव नहीं ले सकती। एक दिन वो कहे कि आज मुझे छुट्टी दे दें, मैं कहीं जाती नहीं, मैं घर ही रहूंगी, रेस्ट करूंगी ना आज, मुझे सोचे तो। और वो भी, वो वर्कर भी कैसी है, अनपेड, अनपेड तनख्वाह देते हो उसको, तनख्वाह देके देखे ना, पता लग जाए जितना वो काम करती है ना, उसकी तनख्वाह हमारे महीने भर की तनख्वाह के बराबर तो क्या उससे कई गुना ज्यादा हो जाए, हम दे ही नहीं पाएंगे। स्त्री, स्त्री जो काम करती है वो सारे काम आप बाहर से करवाओ ना किसी से, फिर देखो आप कितना दे सको। मेरे एक फ्रेंड हैं, मेरे पुराने कुलीग हैं, वो 6 महीने अमेरिका में रहते हैं, 6 महीने इंडिया में रहते हैं। कारण कि अमेरिका में उनके बच्चे रहते हैं और उनका छोटा बच्चा है, अब बेबी सिटिंग के लिए जाना पड़ता है। क्यों भाई, क्या बात है? कहते सर क्या करें, वहां अगर ना जाएं तो बेबी सिटिंग के लिए अगर आप कोई मेड लेते हैं, गवर्नेंस लेते हैं, तो वो कम से कम $17 पर आर लेती है आपसे, $17 पर आर एक घंटे के। और दिन में आप अगर नौकरी पे जाते हैं 8 घंटे भी अगर उसको रख लें, तो ये रोज की कितनी आपकी इतनी तनख्वाह है। तो कहते हैं हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, क्या 6 महीने हम पति पत्नी जाते हैं बेटे के पास और 6 महीने उसके सास ससुर आते हैं। तो देखिए घर की स्त्री क्या कुछ करती है उसको आप देखें, लेकिन हमने कभी उसकी कीमत नहीं डाली ना, हमने अपने एटीट्यूड ऐसे बना लिए, कई फॉल्स एजम्पशंस हमने बना ली अपनी, अपने अंदर कि इनहेरेंटली इन्फीरियर है ना वुमन, जन्मजात इन्फीरियर। और हमारी खुशकिस्मती है वो बेचारी मान लेती है मैं इन्फीरियर हूं, मान लेती है। कहीं नहीं उसने कहा कि तुम्हें आता क्या है भाई, क्या आता है तुम्हें जिसके लिए तुम रोब डालते हो, तुम एक बच्चे को तो आराम से जो है घंटा 2 घंटे रख नहीं सकते। हमारे में से कितने हैं जो ये कह सकते हैं कि अगर पत्नी को, जब बच्चा छोटा था पत्नी को बाहर जाना था तो 2-3 घंटे के लिए हमने बच्चे को संभाला हो, है पड़ जाता और वो बेचारी 2400 घंटे संभालती है, पर रात को अगर बच्चा ना भी सोने दे तो सुबह उठकर आपको समय पर नाश्ता जरूर, नाश्ता क्या, बेड टी जरूर मिलेगी, फिर नाश्ता मिलेगा ताकि आप तैयार होके जा सके। और अगर आप बदकिस्मती से लंच भी साथ ले जाते हैं तो वो लंच भी तैयार करके टिफिन पैक करके आपको पकड़ाएगी, लीजिए सर लीजिए। चाहे वो जाने वाला भाई किसी दफ्तर में पियन लगा हुआ हो, वहां दफ्तर में झाड़ू लगाता हो, ऑफिसर्स को पानी पिलाता हो, आए जाए की बातें सुनता हो, फिर जब शाम को घर आता है तो कैसा होता है, वो वही वही व्यक्ति है। वहां बाहर वालों के लिए झाड़ू भी लगा रहा है, पानी भी पिला रहा है, और घर आकर देखो रोब हो जाता है, शेर हो जाता है, दैट पेपर टाइगर बिकम्स द रियल टाइगर। दिस इज द हार्ड फैक्ट, आप देख लेना अपने जहां भी आप काम करते हैं। चलिए अगर आपका बिजनेस है, आपने नौकर रखे हुए हैं, ऑफिस में हैं आपके सर्वेंट्स, वहां पियंस वगैरह हैं, आप उनको देखें, किसी दिन शाम को अचानक उनके घर पहुंच जाए ना, फिर देखें वहां वो कैसे हैं। वो तो खैर है, वो तो दूसरी बात है, अल्कोहलिज्म तो है हमारा. सो ये फॉल्स एजम्पशन. और साथ में कहेंगे क्या, वुमन इज ए लायबिलिटी, वुमन इज ए लायबिलिटी. अरे हम पाल रहे हैं तुम्हें, तुम बोझ हो, क्या कर सकती हो, दो पैसे नहीं कमा सकती हो, ये कहा जाता है उसको. यानी शी इज ट्रीटेड एज ए लायबिलिटी. अरे मैं अगर नौकरी ना करूं. कई बार हम भी, पुरुष लोग भी कह देते हैं, स्त्रियां भी कह देती हैं कि अगर किसी के पति की डेथ हो जाए, देहांत हो जाए, तो अब बेचारी का क्या होगा, नौकरी तो करती नहीं है, अब गुजारा कैसे होगा, क्या हो? ये सवाल उठते हैं हमारे, क्योंकि उसको कहीं से कुछ हेल्प या मिलने वाली तो है नहीं. सो इस तरह की मेंटल वायलेंस भी उसके ऊपर की जाती है. ये मेंटल वायलेंस तो है और क्या है, उसको मानसिक तौर पर इस तरह से जो है वो एक्सप्लॉइट किया जाता है, सप्रेस किया जाता है, कि बहुत सारी तो जिंदगी भर कुछ उठ भी नहीं पाती है. अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी स्त्रियां जो हैं, अगर वो काम जॉब भी करती हैं, तो बहुत सारी उनमें भी मैंने देखा है, बहुतों का स्थिति कुछ और तरह की है. उनसे पूछो क्यों करती हैं आप, कहे जी क्या करें, अब घर का झगड़ा करें क्या, पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करें. तो आदमी लोग इसी बात का फायदा उठा रहे हैं, हम सारे सारे. लेकिन मेरी खुशकिस्मती है मैं इस तरफ खड़ा हूं, देखो तो वो तो मैं वैसे हूं भी सही, लेकिन और चांस की बात है ये पोडियम भी इधर ही रखा हुआ है, मैंने तो नहीं रखवाया. सो देखिए, मतलब हालत किस तरह की है. यानी मुझे ये था कि बहुत दयनीय स्थिति हो रही है, थोड़ा हंस लें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कहीं पुरुष डिप्रेस ना होना शुरू हो जाए, मुझे मुझे ये भी डर लग रहा है ना. सो ऐसी मेंटल वायलेंस भी है. फिर दूसरी बात, एक और कारण भी है ना, स्त्रियों का लिटरेसी रेट भी कम है. बेशक हम शहरी स्त्रियां तो कहें पढ़ रही हैं कुछ है, लेकिन गांव में अगर पैसे की जरा सी कमी हो जाए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, लड़की को स्कूल से हटा लो, लड़की को हटा लो, कॉलेज जाती है बंद कर दो उसका, क्या जरूरत है ना, लड़कियां पढ़ा थोड़ी करती हैं, अरे मैट्रिक करवा दिया ना, और क्या चाहिए. और लड़का या नालायक हो, एक साल में चार चार, एक क्लास में चार चार बार फेल होता हो, लेकिन नहीं, उसको पढ़ना है, उसको पढ़ना है. और बेटी घर के अंदर जो ब्रिलियंट हो, मेरिटोरियस हो, बस इसके बाद नहीं नहीं. और गांव में तो अक्सर ये होता है, नहीं शहर में नहीं भेजना इसको, शहर में नहीं जाएगी, बस जो पढ़ लिया ना गांव में पढ़ा दिया, हो गया, इसने करना क्या है, घर गृहस्थी तो संभालनी है, रोटी तो बनानी है, तो बना लेगी ना, शादी कर देंगे. मुझे कई बार बड़ा अजीब लगता है कि इवन शहरों में भी कई बार कई बच्चों की शादी, अभी एजुकेशन चल रही है उस बीच में हो जाती है. मुझे उन पेरेंट्स पे बड़ा कई बार गुस्सा भी, मैं बोल भी देता हूं, क्या तकलीफ थी आपको, क्यों उसके करियर खराब किया आपने, क्यों उसकी पढ़ाई बीच में बंद कर दिया आपने? कोई नहीं ना, फिर दे देगी इम्तहान, फिर दे देगी, क्या करना है. और लड़के के बारे में कहो ना, वो फिर दे देगा इम्तहान, नहीं नहीं उसको तो करना है ना कुछ, वंश की रक्षा करेगा, जैसे वंश उसकी इंतजार कर रहा है कि वो बहुत वंश का जितना नाश हम पुरुषों ने किया है ना, सच बात है, सारी गंदी आदतें हमारे में हैं. स्त्रियां सिगरेट बीड़ी नहीं पीती, स्त्रियां शराब वगैरह नहीं पीती, स्त्रियां किसी तरह का ये गलत काम नहीं करती, इमोरलिटी में नहीं इंडल्ज होती हैं, और उसके बाद भी वंश के रक्षक हम हैं, वंश के रक्षक हम बने रहते हैं. सो लिटरेसी भी नहीं है, डोमेस्टिक वर्क भी उसको करना है. सोशल स्ट्रक्चर अब बाबा तो करने आएगा नहीं, चेंज तो हमें ही करनी है ना भाई साहब, आप मैं उठेंगे तभी तो होगा ना. और चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से शुरू करेंगे ना, नहीं अपने घर से ही शुरू करेंगे ना. हिम्मत रखो, अपने घर के काम करो, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, क्या है, कर सकते हैं ना. नहीं हंसने की क्या बात है ना, कर सकते, क्यों नहीं करें, वाई कांट वी शेयर. और एक दिन के लिए मानिए, अगर आप बीमार पड़ जाते हैं आपका हल्का सा सर में भी दर्द हो जाता है तो आप लेट जाते हैं, मुझे कुछ ना कहना, छेड़ना नहीं, तंग नहीं करना मुझे, जो वो बेचारी सेवा करेगी सेवा। और जिस दिन वो बीमार पड़ जाती है, आपने उसको कहा आप लेटो मैं आपके पांव दबाता हूं, गर्दन तो दबा सकते हैं, हाँ मैं आपको, चलिए और नहीं तो चलो मैं आपको चाय पिलाता हूं, चलो मैं आपको आज तबीयत खराब है आज खाना मैं बनाता हूं, बच्चे भी नहीं है घर में, हम दो ही हैं सिर्फ, फिर भी अपनी ईगो, खाना मैं बनाऊं, हल्के से पूछेंगे अब कैसी है तबीयत, वो बेचारी कह देगी ठीक है, किचन तक जा पाओगे या होटल से मंगाऊं, ये आप हाँ सर ये ना सोचिए मैं अपना अनुभव सुना रहा हूं, वो बात नहीं 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 नहीं, मैं मेरा तो देखिए आप मेरा अनुभव जानना चाहते हैं तो आस्क मिसेस गुलियानी, डोंट आस्क मी, क्योंकि मैं कहूंगा तो फिर कहेंगे सर बहुत सेल्फ प्रेज बहुत करते हैं, या आई डोंट माइंड डूइंग एनीथिंग, और माइंड क्या हम करते हैं ना, मिलके करते हैं ना, शुरू से करते हैं, सिर्फ बैठते खुद के लिए, खुद के लिए, पत्नी के लिए नहीं, पत्नी के लिए, पत्नी के लिए खाना, नहीं 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 सर नहीं नहीं, देखिए देखिए प्लीज प्लीज, हम चाहे कितनी भी, देखिए बहनें जो भी बैठी हैं, या बहनें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी कुक हैं, इनकी क्वालिटी के लिए मैं जितनी भी बात करूं, लेकिन एक बात तो और है, आपने जैसे कहा जो बनाते हैं खुद खा पाते हैं, सच बात तो ये है कि अगर मुझे पूछेंगे ना आप, तो मैं ये कहता हूं कि जैसा मैं बना पाता हूं यहां कोई भी बहन नहीं बना पाती होगी, और बना पाती क्या, मैं बनाता हूं ना, क्या दिक्कत है, या अगर एक मिनट के लिए आपकी पत्नी बेड रिडन हो गई और आपको ड्यूटी पर भी जाना है क्या करेंगे, फॉर मी इट इज ओके, आई वुड कुक माई ब्रेकफास्ट, आई वुड कुक द ब्रेकफास्ट फॉर हर, सर्व हर द ब्रेकफास्ट, टेक माई ब्रेकफास्ट, प्रिपेयर ए कप ऑफ टी, पुट इट इन द थर्मस, पुट इट बिफोर हर ऑन द बेड, पुट ए बॉटल ऑफ वाटर विद हर, पुट द टेलीफोन बिफोर हर, एंड देन आई वुड गो टू माई कॉलेज, एंड एज सून एज आई एम फ्री फॉर ए पीरियड और टू, आई विल टेक माई व्हीकल, कम बैक होम, फाइंड आउट हाउ इज शी, एंड देन गो बैक, and if there is time we'll take a cup of tea together and then I'll go back again to the calling, how does it matter, kya fark padta hai, aur dekhiye waise bhai logon se keh raha hu agar mil ke kaam karenge to thakavat na usko hogi na aapko hogi, aur jab ikatthe kaam kar rahe honge baat cheet bhi to karenge na, pyar badhega na, kyun na wo sthiti lekar aaye hum apne liye bajaye iske ki wo bahar आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में, हाँ जी क्या हुआ, हाँ या लेकिन वही बात है ना, ये गाने ही तो सुनती हैं सिर्फ, पंछी बनू उड़ती चलू, उड़े तो नहीं, पंछी भी नहीं बने ना आप, चले या सो देखिए अब एम्पावरमेंट हो तो कैसे हो, एम्पावरमेंट हो विमेन की तो कैसे हो, सबसे पहली बात तो ये है, अभी पीछे सविता बहन भी पढ़ा रही थी और भी पढ़ा रही हैं, सेल्फ एस्टीम पैदा करें, अब ये बहनों को खुद पैदा करनी है अपने सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान, अपने आप को सम्मानित करना सीखें, घमंड ना करें लेकिन अपनी इज्जत करना तो सीखें, मेरे में क्या कमी है जो मैं गुलामों की तरह बर्ताव करती हूं, क्या कमी है मेरे में, मैंने किसी का कर्ज देना है क्या,
या मेरे अंदर कोई ऐसी वीकनेस है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, मैं पढ़ी लिखी हूं, जरूरत पड़े तो मैं काम भी कर सकती हूं, घर का सारा काम संभाला हुआ है, पति की सेवा भी करती हूं, उसके बाद भी अगर मुझे निम्न स्तर का समझा जाए तो ये मेरी कमी है, मुझे आत्मसम्मान प्राप्त करना है। इफ यू कैनॉट रिस्पेक्ट मी, फॉरगेट दैट आई विल डू एनीथिंग फॉर यू। अगर आप मेरा आदर करना नहीं जानते तो फिर सेवाओं की भी उम्मीद मत करिए। सेवा उसको मिला करती है जो सेवा की कद्र करता है, और बिना कद्र के, बिना वैल्यू के, बिना कीमत के मिली हुई चीज की कोई कीमत नहीं पड़ती। मुफ्त में चीज मिल जाती है उसकी क्या कद्र है। पुरुषों को मुफ्त में बहनों ने सेवाएं दी हैं, थोड़ा सा कंडीशन लगा के देना सेवाएं, फिर पुरुषों को भी पता लगेगा कहां कहां जो है जरूरत है, कहां मुझे उसकी आदत। यानी देयर शुड बी ए लाइन, एक रेखा हो ना, एक लक्ष्मण रेखा हो, पुरुष को भी पता हो मुझे इस रेखा से बाहर नहीं जाना है। होना चाहिए। हाँ, क्या कहा आपने, कौन सी महिलाएं? हाँ हाँ, NH10 पे वो महिलाएं कैसे सीखेंगी? नेचुरली उनको भी सिखाना होगा, उनके अंदर भी ये बात लानी होगी, जरूरत पड़े तो वो बाहर मकान के बाहर पड़ा हुआ हुक्का तोड़ना होगा, और जरूरत पड़े तो जितने लोग आकर बैठे हैं उनको भगाना, अपने अपने घरों में जाओ। शाम को माँ या बाप कह देते हैं ना, दूसरे बच्चे जो खेल रहे होते हैं, बच्चे अब घर चलो, बाकी को बेटा अब घर जाओ, हो गई शाम फिर देखना, जाओ कहते हैं ना, भेजते हैं ना, तो उनको क्यों नहीं भेज सकते? भाई अपने अपने घरों में जाओ, तुम्हारे घर में कोई काम नहीं क्या? इसको काम करने दो, क्यों इसका टाइम वेस्ट कर रहे हो? कह सकते हैं, क्या होगा, हाथ उठाएंगे, बात तो फिर वहीं आएगी। हाथ पकड़ने का हिम्मत होना चाहिए, हाथ पकड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। झगड़ा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, पहले पति देव को अपने घर की चार दीवारी के अंदर समझाना है, समझाना है कि देखो भाई बहुत हो गया, मैं जितना कर सकती थी मैंने कर लिया, अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है, मैं डूबना नहीं चाहती, मरना भी नहीं चाहती, इसीलिए मुझे अगर बचाना है तो मुझे पानी से ऊपर रहना है। सो सुनो मेरी बात, समझाएं उसको, प्यार से समझाएं, तो वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आगे आएंगी ना, कुछ करेंगे ना। एक गांव के अंदर जहां मान लीजिए 100 स्त्रियां ऐसी हैं, अगर आपने 4-5 को भी समझा दिया ना, लहर चल पड़ेगी, अपने आप सारी सीख जाएंगी। हैं जी भाई, हाँ हाँ, आप देना मनसा सेवा दें, जरूर असर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना, डेफिनेटली यस। सो कहने का भाव ये है कि पहली बात सेल्फ एस्टीम है, अवेयरनेस है, अवेयरनेस है, पावर ऑफ चॉइस होनी चाहिए, पावर ऑफ चॉइस, कि ठीक है मिलके फैसला करते हैं ना, कहीं आप ठीक कह रहे हैं, कहीं मैं भी तो ठीक कह रही हूं ना। बच्चों के बारे में आपको पता है, लेकिन मैं घर में रोज देखती हूं ना बच्चों में कैलिबर कितना है। बच्चों का होमवर्क कराना है ना, 2 सब्जेक्ट का आप कराया करो, 1 का मैं करा दिया करूंगी। इस बच्चे को सुबह नहला आप दिया करो, नाश्ता मैं बना दिया करूंगी, क्या दिक्कत है? यानी यू नीड दैट सॉर्ट ऑफ कोऑपरेशन, और उसके लिए स्त्री को आगे आना है, इनोवेटिव होना है, सोचना है मैं किस, देखो पुरुष हर तरह के अलग अलग हैं, यानी ये तो नहीं कि हम एक कहें कि वो एक नियम बना दिया और वो सब पुरुषों पे लागू हो जाए, हर एक की नेचर अलग अलग है ना, कोई एक सेकंड में समझ जाएगा, कोई बिना समझाए समझ जाएगा, कोई मेरे जैसा थोड़ा डर से समझ जाएगा, किसी को जो है डराना पड़ेगा और ज्यादा, तो अलग अलग ढंग से, अलग अलग ढंग से। हाँ क्या कह रहे हैं,
मैं कह रहा हूं चौकी के नीचे छुप जाएगा ऊपर।
यही तो बात प्रॉब्लम यही है, हम ऐसे जोक्स तो सुना देते हैं कि पति पलंग के नीचे छुप गया, और वो बहने ऐसी हुई तो नहीं ना जो पति को पलंग के नीचे छुपा सके। हाँ वो है, मैं घर का मालिक हूं ना, मेरी मर्जी है, मैं जहां बैठू जैसे बैठू, मैं पलंग के नीचे बैठा हूं, तेरे को क्या इतराज है। सो वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। तो ये तो सिर्फ जोक्स के लिए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वास्तविकता में भी तो ऐसा हो ना, पति पति को पत्नी का डर हो, अगर पत्नी को पति का डर है, वैसे तो डर किसी का भी आपस में नहीं होना चाहिए, एक दूसरे की आदर इज्जत होना चाहिए, कोऑपरेशन हो ना, सहयोग करें ना आपस में मिलकर। जरूरी है कि वो स्त्री मांगे, कोऑपरेशन मांगे, तब हम कोऑपरेट करें, क्यों नहीं हम शुरू से ही कर सकते। लेकिन बदकिस्मती से ये आजकल जो वो प्रोफेशनल कपल्स हो रहे हैं, वहां प्रॉब्लम और हो रही है। कहने को तो कैसी भी कोऑपरेशन क्या कहें, वहां मैं समझता हूं कोऑपरेशन और खत्म हो रही है। क्या जॉब से है, वो भी प्राइवेट जॉब में, आठ आठ दस दस घंटे की ड्यूटी है, और मोबाइल इतने कॉमन हो गए, दो दो तीन तीन मोबाइल हर एक के पास हैं। वो पत्नी अपने ऑफिस से फोन करती है, देखो जी मुझे देर हो रही है, रास्ते में होटल है, खाते जाना और मेरे लिए लेते जाना, या दोनों का लेते जाना, मैं इतने बजे आ जाऊंगी। अब क्या क्या करेंगे कि मुझे तो पकाना ही नहीं है। बहुत बार तो ये कहने को सुनने को मिल जाता है, मुझे पकाना आता ही नहीं है। Yes, I know of many people, many girls, newly married girls, who say, no sir, मुझे नहीं आता कुछ भी, मैंने सीखा नहीं, माँ बाप ने सिखाया ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, आगे भी क्या जरूरत है, कर लेंगे ना। और वहां बेचारे मदर इन लॉ फादर इन लॉ, क्यों दोनों को जॉब पे जाना है, आजकल बुजुर्गों की बड़ी कीमत हो रही है, आप खुशी से बुजुर्ग हो जाना, क्योंकि वो पता क्या है, उनकी डिमांड है। अब जब बच्चे छोटे हैं, पति पत्नी दोनों ने जॉब पे जाना है, तो बच्चे को कौन संभालेगा। मैंने आपको बताया ना, 6 months इन यूएसए, स्पेशल अमेरिका जाकर 6 महीने बेबी सिटिंग करनी है। यानी ऐसी स्थिति बन गई हमारी, बना रहे हैं हम, कोऑपरेशन आ नहीं रही है हमारे अंदर। जो है हम जो है चाहते हैं चेंज आए, लेकिन वो मैक्रो लेवल चेंज है, बाहर की ऊपर की, माइक्रो लेवल जो सूक्ष्म चेंज है वो नहीं आ रही है। दिखावे के लिए हम कर रहे हैं ना काम, मैं जाता हूं शाम को सब्जी लेकर आ जाता हूं, बच्चे को ले जा रहा हूं ट्यूशन के लिए, लेके आ गया, बच्चे की किताबें भी खरीद के लाता हूं, यूनिफॉर्म भी खरीद के लाता हूं, स्कूल से बच्चे का टाइम हो गया उसको घर ले आता हूं, सवेरे ले जाता हूं। ये मैक्रो लेवल चेंजेस हैं, बाहर की हैं, ऊपर की हैं। जो माइक्रो लेवल अंदर की सूक्ष्म चेंज चाहिए वो तो नहीं हो रही है, मन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, उसकी जरूरत है, तब विमेन एम्पावरमेंट हो पाएगी। जब मन में परिवर्तन आ जाए, और मन में परिवर्तन दोनों का चाहिए, देखिए यहां गलत मत समझे, पुरुष के परिवर्तन से भी बात नहीं बनने वाली है, दोनों में परिवर्तन आएगा तभी जब दोनों ये सोचेंगे कि हम एक ही संस्था में, एक ही इंस्टीट्यूशन के दो इंटीग्रल पार्ट्स हैं, अभिन्न पार्ट हैं, एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है, वी आर सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, तब तो बात बनती है। वरना मैं सहयोग करूं, वो ना करे, वो करे, मैं ना करूं, तो नहीं चलेगा। ट्रैक्टर और स्कूटर का पहिया अगर लगा देंगे किसी व्हीकल के अंदर, तो वो स्कूटर नहीं चला करता, वो व्हीकल नहीं चला करता है। इसीलिए हमें ये माइक्रो लेवल चेंजेस भी चाहिए, और फिर वही बात है कि एम्पावरमेंट बिगिंस एट होम, चैरिटी बिगिंस एट होम, मुझसे शुरू होगी, भाषण से नहीं होगी शुरू। मैं परिवर्तन करूं ना अपने को, अपने बच्चों में परिवर्तन लाऊं ना, लड़के और लड़की के अंदर परिवर्तन लाओ ना, उनकी थिंकिंग के अंदर, उनके संस्कारों के अंदर परिवर्तन लाओ ना, तभी बात बनेगी। ये कहना देखो हमने कितने ढंग से, एक लड़की पढ़ जाए तो वो इतने परिवारों का जीवन बना देती है, हमने ऐसी ऐसी बातें कह रखी हैं, लेकिन एक लड़की परिवार को संभाल लेती है, पुरुष तो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने किया। पढ़ाया लड़की को, केवल भाषण दिए, किताबों में लिखा, कानून बना दिए, रिसर्च हो गई, लेकिन हालात वहीं के वहीं हैं। देना भी नहीं चाहिए, वो तो मैं हक में नहीं हूं, मैं कभी भी इस हक में नहीं। रिजर्वेशन से देखिए, मेरा अपना व्यू है, हो सकता है गलत हो, अगर आपने किसी कम्युनिटी को, किसी ग्रुप को नीचे गिराना हो, कभी ना उठने देना हो, तो उसको रिजर्वेशन दे दो, रिजर्वेशन दे दो। यानी आप देखें, जब 1947 में भारत का पार्टीशन हुआ, हिंदुस्तान आजाद हुआ, उस समय दो तरह के लोग थे जो बड़े निसहाय थे। एक वो जो लोअर कास्ट से थे, एक वो जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए थे, वो भी लाखों की संख्या में थे। उस वक्त हुआ क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बैकवर्ड शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन रखी गई, लेकिन जो माइग्रेटेड पीपल थे उनमें से काफी लोगों ने कहा नहीं चाहिए हमें ये रिजर्वेशन, मत करो हमारे लिए। अगर उनके लिए रिजर्वेशन रख दी होती तो आज तक वो सड़कों पर टोकरियां उठा रहे होते, और उन लोगों ने अपने पांव पे खड़ा होना सीखा, भूखे रहे तो भी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाई अपनी, मेहनत की उन्होंने, और आज वो लोग समाज के किसी भी हिस्से से बराबर नहीं, आई डोंट से रिचेस्ट और पुअरेस्ट, नो आई डोंट से, बट दे हैव देयर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट। पढ़ाई में कहीं से किसी से पीछे नहीं है, कमाई में किसी से पीछे नहीं है, सोशल प्रेस्टीज में किसी से पीछे नहीं है, समाज के एक हिस्सा है ना। और जिन कास्ट को हमने रिजर्वेशन दी, शेड्यूल्ड कास्ट को दी हमने, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को दी हमने, बैकवर्ड क्लासेस को दी हमने, क्या आज भी हम कह सकते हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट नहीं है? आज भी हैं, आज भी वो बैकवर्ड क्लास हैं, आज भी वो ट्राइबल्स हैं, आज भी वैसे ही हैं। और शिक्षा में उनका कितना सुधार हुआ है, गिने चुने कोई एक आधा परसेंट। अगर 10 लाख वो लोग थे तो क्या हुआ, कहीं 100-500 हजार लोग टोटल बन गए होंगे, आगे निकल गए होंगे, मेजोरिटी वही की वही है। रीजन दिस रिजर्वेशन एंड पोलिटिसाइजेशन ऑफ दिस रिजर्वेशन, जो हमारे पॉलिटिकल नेताओं ने इनको जो है रिजर्वेशन का वो क्या कहते हैं वो दे दिया, इंजेक्शन दे दिया, ओपियम, जैसे कम्युनिस्ट तो कहते हैं ना, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, दिस रिजर्वेशन हैज प्रूव्ड द ओपियम ऑफ आवर लोअर कास्ट्स। अगर इनको रिजर्वेशन ना मिली होती, बिलीव मी, आज ये किसी से भी ऊंचे होते, क्योंकि सर्वाइवल, सर्वाइवल का क्वेश्चन तो जब आदमी के सामने आता है तो कुछ भी कर लेता है ना, क्योंकि उनको ये सर्वाइवल का क्वेश्चन दिया ही नहीं गया ना, सर्वाइवल वॉज एंश्योर्ड, आपकी सर्वाइवल तो पक्की है, चिंता मत करो, चिंता मत करो, तो फिर वही NH10 पर बैठे हुक्का पी रहे हैं उसी तरह से, निश्चिंत है ना, ये मिल जाना है, ये तो हो जाना है ना, क्या करना है हमने। सो वो सिचुएशन है। सो इसीलिए यानी विमेन एम्पावरमेंट की बात हम कर रहे थे, उसके लिए जरूरी है कि हम ये अंदर से सूक्ष्म लेवल पर एम्पावरमेंट लाएं, आइडियाज को चेंज करें। बाबा तभी बार बार कहते हैं ना, संकल्प 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 की पावर, साकाश की पावर, मनसा सेवा की, क्यों बाबा कहता है बार बार? कोई भी चेंज मनसा से शुरू हो सकती है। अगर हम सच में परिवर्तन लाना चाहते हैं, मैं सवेरे भी एग्जाम्पल दे रहा था कि वृक्ष के पत्तों को काटने से कुछ नहीं होगा, बीमार पत्तों को काट दोगे कुछ नहीं होगा, जड़ तक जाओ, अंदर तक जाओ, संकल्पों तक जाओ, संकल्पों में एक विचारधारा में परिवर्तन आए ना, तब जाकर कहीं हम कह सकते हैं कि एक अच्छे हेल्थी सोसाइटी की नींव रखी जा रही है, बनाया जा रहा है। स्त्रियों को बराबर वेतन दे देना, स्त्रियों को ये कुछ नहीं होने वाला, उससे उनके विचारों को बदले, उनको एजुकेशन दें अच्छी। जब तक हम उनको हेल्थी एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, तब तक उनके विचार बदलेंगे कैसे? सो बाकी सारी चीजें केवल रिजर्वेशन मात्र प्रूव होंगी। अब वायलेंस अगेंस्ट विमेन जो है वो उसके विभिन्न तरीके बताए हैं, जैसे हमने बात भी की है, कर भी रहे हैं लगातार, जैसे फीमेल फिटिसाइड है, यानी भ्रूण हत्या,
या इन्फेंटिसाइड है, यदि शिशु कन्या का जन्म के समय ही उसको जो है मारना करना, तो वो इन्फेंटिसाइड कहलाता है। इसी तरह से स्त्री की फोर्स्ड मैरिज है, जबरदस्ती, इवन अगर उसकी एज नहीं भी हुई है कर दो शादी, यानी जैसे वो सोचते हमारी बला तो टली ना। लोग तो कहते हैं लड़की मां बाप को बहुत प्यारी होती है, ये होती है वो होती है, कुछ नहीं है। हाँ वो बेचारी आकर तो मां बाप की सेवा बेशक कर दे, लेकिन मां बाप ने अपनी बला टाली। और देखो हमने कितने टर्म्स लगाई है ना हमारे सोशल डायलेक्ट के अंदर, हम क्या कहते हैं, बात करते हैं कि गंगा नहा लिए ना, लड़की की शादी कर दी, गंगा नहा लिए, यानी सारे पाप धुल गए। गंगा, लड़की की शादी करना गंगा नहाना मीन्स पाप धुलना। तो लड़की के पहले तो हम दान की बात सुबह कर रहे थे ना, अब देखे ना हम गंगा भी तो नहा लिए, दान भी कर दिया, गंगा भी नहा ले, तो और क्या रह गया, स्वर्ग पहुंच गए ना हम। सो देखिए हमने ऐसी ऐसी बातें करते हैं, यानी कन्या की शादी कर दी हमने यंग एज पर। और डोमेस्टिक वायलेंस बड़ी कॉमन है, यानी घर के अंदर स्त्री पर अत्याचार। वो तो यहां अब तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन एक टाइम था जब 90% लड़कियों की अगर इनलाज के यहां डेथ होती थी तो सबसे बड़ा बेचारा दोष का कारण क्या था, वो स्टोव था बेचारा, कि ये स्टोव से आग लगे, वो स्टोव ही बड़ा इंस्ट्रूमेंट काम आता था हर वक्त ना, कि कभी बर्स्ट हो जाता है, कभी तब क्यों नहीं बर्स्ट होता जब मेरे जैसा वहां काम कर रहा है, तब क्यों नहीं बर्स्ट हुआ, वो पुरुष बैठा है काम कर रहा है या उसके आसपास है, उसको आग क्यों नहीं लगी, सास को भी नहीं लगी। वो तो खैर वैसे अब बात करेंगे, वैसे करनी तो क्या चाहिए, स्त्रियों की सबसे बड़ी दुश्मन भी स्त्री है। आपने हमेशा सास बहू के किस्से सुने हैं, कभी बहू ससुर का किस्सा सुना कि उनका झगड़ा हुआ हो आपस में, सास का होता है और बहू के साथ होता है हमेशा, दोनों स्त्रियां हैं, छोड़ो इस बात को, तो क्या कहना है हमें। सो कहने का भाव ये कि देखें वायलेंस में, यानी डोमेस्टिक वायलेंस है, डिनायल ऑफ एजुकेशन भी है और अब्यूज ऑफ वीमेन बाई अदर वीमेन है, सास बहू की बात हम कर रहे थे जैसे, और फिर विमन के साथ कास्ट बैरियर्स भी लगे हुए हैं, जाति के भी हैं। सो और बहुत बार तो कई बार यानी स्त्री ही है जो फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन का भी शिकार बनती है, वैश्यावृत्ति जो है वहां भी बहुत ज्यादा, लड़कियों को किडनैप करना, कुछ साल उनको कहीं ऐसी छुपी जगह पर पालना, बड़ा करना, फिर प्रोस्टिट्यूट के तौर पर बेच देना। अब सिचुएशन क्या होती है, देखो आप कहेंगे जी इसमें पुरुष का क्या दोष है, दोष बहुत बड़ा है, ये नहीं कि वो ही इंडल्जेस इन प्रोस्टिट्यूशन, वो भी नहीं, लेकिन हमने समाज में बना दिया लड़का घर से निकल जाए और 6 साल बाद भी मिल जाए तो उसको बड़े प्यार से मिल गया, कहां था बेचारा, क्या क्या हुआ उसके साथ, अन्याय हुआ, ये वो हुआ। और लड़की अगर गलती से कहीं एक दिन भी बाहर रह जाए तो दोबारा घर वापस आना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, कहां थी, कहां गई, कहां रही, कोई नहीं पूछेगा बेटा कितनी तकलीफ हुई, कितने दुख मिले, नहीं, इसने तो समाज में हमारी नाक काट दी, तुम्हारी नाक है कहां जो कट जाती, यानी बात तो वही आती ना, हमने वो इस तरह के बना रखे। अब वो लड़की क्या करेगी, कहां जाएगी, अल्टीमेटली शी विल बिकम ए विक्टिम ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन, शिकार बनेगी ना, बाहर भी तो हमारे जैसे पुरुषों जैसे दरिंदे बैठे हैं ना, कहां जाएगी वो। आप तो एक रात के लिए वो लड़की कहीं रह गई, किसी सहेली के पास रही हो, कहीं रही हो, उसको आप घर में नहीं घुसने देते, आने वाली कितनी रातें वो कहां रहेगी, अब कोई नहीं सोचता। तो दिक्कत तो है, स्त्रियों के लिए प्रॉब्लम्स तो हैं,
बात हम बहुत बार करते हैं विमेन्स लीगल राइट्स, लीगल राइट्स, राइट्स तो बहुत सारे कानून हैं, बहुत कानून हैं। मुझे कई बार इस बात पे भी बड़ी शिकायत होती है कि जब भी कोई बात होती है हमारे देश के अंदर कमेटी बना देंगे, इंक्वायरी कमेटी लगा देंगे, हां बनाएंगे और पार्लियामेंट में कानून पास कर देंगे और सरकार समझती है कानून बना दिया हमारी ड्यूटी खत्म, कमीशन हो गया ना। यदि हमने कमीशन तो बिठा दिया और क्या करें, अब कमीशन जब रिपोर्ट देगा देखेंगे, कमीशन रिपोर्ट देगा 10,000 पेजेस की रिपोर्ट देगा, 6 साल बाद देगा, और 6 साल बाद जो रिपोर्ट देगा वैसे भी रिडंडेंट होगी वो, लेकिन उसको पढ़ने के लिए उसको इंप्लीमेंट करने के लिए फिर एक और कमीशन बनेगा जो उसको 10,000 पेजेस को पढ़ने के लिए उसको एनालाइज करने के लिए, और फिर वो अपनी रिकमेंडेशन देगा कि जी ये बातें जो है इस रिपोर्ट में से अप्लाई की जानी चाहिए, फिर पार्लियामेंट में सोचेंगे, पार्लियामेंट में मुद्दा चलेगा। इस प्रोसेस में 20-25 साल निकल जाते हैं, 20-25 साल निकल जाते हैं। यही कारण है कि भारत के अंदर आप देखें कानून की लिमिट नहीं है, लिमिटलेस कानून है, आप कोई मुद्दा उठाएं उस पर कानून है। लेकिन किसी भी कोर्ट के अंदर चले जाएं और उनसे पूछें कि सर कब तक के केसेस आपने निपटा दिए, क्यों नहीं हम किसी जज को डिसमिस कर सकते कि आपकी कोर्ट में ये केसेस इतने सालों से चल रहे हैं, आपने क्या किया, सिर्फ एडजर्नमेंट देते रहे, तारीख देते रहे, आगे नेक्स्ट 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 यही काम करते रहे, और क्या किया आपने, व्हाई कांट वी डिसमिस देम। अरे एक झगड़े का केस है, आपस में झगड़ा हो गया, उसको आपने 6 साल तक नहीं निपटाया, तारीख दी आपने, किस लिए, कोई नहीं पूछता, क्यों, हमारे अंदर यह है कि अगर आपने किसी मजिस्ट्रेट के बारे में किसी कोर्ट के बारे में कुछ कहा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगी और आपको सजा हो जाएगी, अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की बेइज्जती की आपने ना, यानी कोर्ट से अगर आपने सच भी पूछ लिया तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्योंकि मजिस्ट्रेट को वो जचती नहीं ना बात, वो हजम नहीं होती उसको। तो लीगल राइट्स तो बहुत हमने बना रखे हैं, लेकिन उन सब कानूनों की यानी हम लोग बड़े आराम से धज्जियां उड़ा देते हैं। मैं जेल की कई बार बात करता हूं आपसे, हिसार की सेंट्रल जेल और बोस्टल जेल की, मैं कई कई बार ऐसे मैंने देखे हैं जहां पर पूरा का पूरा परिवार जेल में है। यानी एक बार तो यानी एक ऐसी बुजुर्ग औरत दोनों हाथों में बैसाखियां, उसको पूछा कि माता जी आप कैसे हैं यहां, किस बात के लिए, वो कहती है कि मेरे पोते की बहू जहर खा के मर गई और उनके पेरेंट्स ने हमारा सबका नाम दे दिया, हम जेल में हैं। चलिए और कब तक जेल में हैं, कब से हैं, कितने साल हो गए, पता नहीं कब फैसला होगा, कई बार जमानत नहीं होती, कई बार जमानत हो जाती है तो जिसकी जमानत हुई वो भी निश्चिंत और कोर्ट भी निश्चिंत, अब ये तंग नहीं करेगा, चलने दो केस, जमानत हो गई ना, वो आजाद घूमता है, वो आजाद घूमते हैं, कोर्ट और वकीलों को पैसे मिलते हैं, चल रहा है, हमारा सिस्टम हो रहा है ना ऐसा। यानी हमने किस तरह की सोशल मेलेडीज पैदा की हुई है, यानी ये तो जनरल समाज में जुडिशरी के लिए है, विमेन के साथ भी यही होता है किसी भी बात के लिए। और अगर आप देखिए पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, कोर्ट में पहुंच जाए, तो कोर्ट क्या करती है, आमतौर पर स्त्री को अलग से समझाती है, बहन जी रहना तो यही है ना, कर लो, कहां जाओगे, आपस में समझौता कर लो ना। यानी उसको इशारा दिया जाता है कि अल्टीमेटली तेरा भला इसी घर में है, पीटते हैं तो कोई बात नहीं, मारा तो नहीं ना, जिंदा तो तू है ना। यानी इस तरह की आर्ग्यूमेंट्स दी जाती हैं। आप क्या कहेंगे ऐसे मजिस्ट्रेट्स को या ऐसे समझाने वालों को, क्या कहेंगे? और वो फिर गर्व से कहते हैं हमने झगड़े के फैमिली जो डिस्प्यूट्स थे इतने डिस्प्यूट्स का फैसला कर दिया हमने, कर दिया तुमने, स्त्रियों को फोर्स किया, उसको बता दिया कहां जाएगी, भाई तू बता कहां जाएगी, मान लो मैं तेरे जो है डिवोर्स की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेता या कर लेती हूं और तुम्हें डिवोर्स दे देती हूं तो कहां जाएगी तू, है कोई? तेरा कोई रिश्तेदार, तेरे माँ बाप तेरे को घर में रखने वाले हैं? बोलो। और उसको डराया जाता है कि डिवोर्स का केस 5 साल भी चल सकता है, 5 साल के लिए तू कहां रहेगी, तेरे माँ बाप तुझे रखेंगे नहीं, पति पत्नी बन के तुम रह नहीं सकते, कहां रहेगी तू, है कोई? ऐसी ऐसी आर्ग्यूमेंट्स दी जाती हैं। कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट्स पुरुष को देता है? लेकिन नहीं। स्त्री के साथ वहां भी इनजस्टिस होता है। और फिर कानून इस तरह के हैं जिस जहां पुरुष को आगे लाया जाता है, स्त्री को पीछे रखा, उसकी इनविजिबिलिटी बनी रहे। परिवार की जब भी बात होगी पुरुष की, अब हमने पर्सन शब्द यूज करना शुरू कर दिया, वरना चेयरमैन, चेयरवुमन तो नहीं कहते थे कभी भी, चेयरमैन, अब चेयर पर्सन कहना शुरू कर दिया। अब थोड़ा सा वही थोड़ा डर हुआ ना, कहीं कुछ और बढ़ ना जाए जरूरत से ज्यादा, तो चेयर पर्सन हो गया। हाँ, होम मेकर जैसे हो गया। कहने का बात यह है कि वो इस तरह से उसके साथ किया जाता। और फिर जहां कानून है, वेस्ट के अंदर भी कानून है, लॉज अगेंस्ट सेक्सुअल हैरासमेंट कानून है, वहां पति भी पत्नी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट नहीं कर सकता वेस्ट में। लेकिन क्या भारत में ऐसा है क्या? देखिए अब बात करें, अगर पति सेक्स सेटिस्फेक्शन चाहता है तो उसको मिलेगी, अगर पत्नी सेक्स सेटिस्फेक्शन चाहती है तो उसको मिलेगी, अगर पत्नी नहीं चाहती है तो क्या पति को रोक सकती है, और पति नहीं चाहता है तो क्या पत्नी कर सकती है? नहीं। फिर वही इक्वालिटी कहां है? यानी हमने तो ये इश्यूज ऐसे समझे, अरे इसकी बात सेक्स की, नो नो डोंट डिस्कस। हमने तो वो विक्टोरियन टाइम में कहा जाता था, देर वर सर्टन वर्ड्स जिनको वी वुड ट्रीट देम विद अवर ग्लव्स ऑन, जैसे दस्ताने पहन के काम करना होता है ना। तो आप विक्टोरियन लिटरेचर पढ़ें, इंग्लिश लिटरेचर विक्टोरियन पढ़ें, वहां पर कई ऐसे शब्द हैं, बड़े ऑर्डिनरी शब्द, यानी एक वेरी सिंपल वर्ड लेग, LEG, वो शब्द इस्तेमाल नहीं होता विक्टोरियन लिटरेचर के अंदर, आप पढ़ के देखें उसको कहीं भी, कि वहां प्योरिटी प्योरिटी की बात की जाती थी। ये बातें नहीं, नहीं खुलेआम ये बातें नहीं कर। और उसी सोसाइटी के अंदर स्कूल फॉर स्कैंडल जैसे प्ले लिखे गए बाद में, जहां पर जो है एक दूसरे के विरुद्ध कॉन्स्पिरेसी हो रही है, पति पत्नी के विरुद्ध कर रहा है, पत्नी पति के विरुद्ध कर रही है, पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ है, पुरुष किसी और के साथ, इस तरह की बातें। यहां लॉज तो हैं अगेंस्ट सेक्सुअल हैरासमेंट, लेकिन उनकी पालना कितनी होती है? कानून में, कोर्ट्स में आप देखें ना जाकर, कहीं ये कितने अखबारों में रेप के केसेस और ये आते हैं, अब थोड़ा सा कुछ होने लगा, लेकिन उनका निपटारा होता है? और उस बेचारी विक्टिम को क्या इन ह्यूमन ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ता है अदालत के अंदर, ये कोई कह ही नहीं सकता। यानी आई से लेट अस नॉट डिस्कस दिस। इतना ओके, मैं तो सोचा कि आप चाहेंगे कि विमेन एम्पावरमेंट मिस नहीं होनी चाहिए, आप ये मिस हो जाए। चलिए आप मुझे 5 मिनट और दे देंगे, 5 मिनट और दे देंगे। चलिए क्विकली क्विकली वी रश थ्रू देन। चलिए इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर भी जो है वो विमेन के लिए अति आवश्यक है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए। और अगर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर स्त्री के हाथ में हो, स्त्री के हाथ का मतलब ये नहीं है कि वो डोमिनेट करे, लेकिन वो उसको एंजॉय कर सके, उसको एक्सपीरियंस कर सके, उसमें पार्टिसिपेट कर सके, अगर उसका दिल करे इलेक्शन लड़ना है तो वो लड़ सके। हमने ये कानून तो बना दिया पंचायतों के अंदर इतने परसेंट पंचेस जो है लेडीज होंगी, लेकिन वहां भी जो है वो नाम लेडी का होता है, काम पुरुष करता है। पंच जो है वो पुरुष बनता है, नाम दक्षत स्त्री के होते हैं, सारा कुछ पुरुष करता है। ये पॉलिटिकल पावर अगर हो इकोनॉमिक पावर के साथ, तो उसकी वेलफेयर हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन वही बात है विमेन पार्टिसिपेशन हो उसके अंदर। और अल्कोहलिज्म से जो है वो समाज को बाहर ला सके, उसके लिए विमेन ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए, और विमेन और एनवायरमेंट को भी हम थोड़ा सा बेटर बनाएं, जहां विमेन काम करती हैं दफ्तरों में, इंडस्ट्रीज में, क्या हमने एंश्योर किया कि हमने स्त्रियों को एम्प्लॉय तो कर लिया, लेकिन क्या स्त्रियों के लिए हमने वो सुविधाएं रखी वहां पर, यानी अच्छे टॉयलेट्स हैं? अगर स्त्री है, उसका छोटा बच्चा भी हो सकता है, उसके लिए हमने कोई नर्सरी वगैरह बनाई वहां पर, बच्चों की केयर करने के लिए? छोटा बच्चा है, मां काम कर रही है, उस छोटे बच्चे की देखभाल कौन करेगा? या तो घर में वो किसी को रखेगी, और या यहां ला नहीं सकती, या छुट्टी ले ले फिर वो, तो फिर एक्सप्लॉइट क्रैश क्रैश नहीं है ना। क्रैश में अगर रख के आएगी तो उसके पैसे कौन देगा? सरकार तो पैसे देती नहीं, इंडस्ट्री पैसे देती नहीं, स्त्री की तनख्वाह इतनी हो ना। सो कहने का भाव ये है कि एक एनवायरमेंट भी पैदा करें ना, स्त्री काम कर रही है, स्त्री की जो है अवेकनिंग हो रही है, लेकिन जहां वो काम करती है वहां उसको एम्पावर करने के लिए ये जो सुविधाएं हैं वो दी जानी चाहिए ना। वहां इंडस्ट्री के अंदर क्यों ना कंपलसरी किया जाए कि एक फ्री क्रैश होना चाहिए, जिन माताओं के बच्चे छोटे हैं वो अपने बच्चे को साथ लाएं, क्रैश में रखें, उनकी देखभाल हो, शाम को बच्चा साथ में जाए। लेकिन ऐसा नहीं, वही बात है ना, है नहीं ना यही चीजें। और फिर इन चीजों का अरेंजमेंट तो हम कहां करेंगे? स्त्रियों के वेजेस भी हमने बहुत कम रखे हुए हैं, लो वेजेस पे काम लेते हैं हम। पुरुष अब तो थोड़ा काफी बराबर सा हो रहा है, वरना मुझे याद है, आई रिमेम्बर इन 1966 हमने अपना मकान बनाया पेरेंटल, उस समय लेडी मजदूर और मेल मजदूर दोनों में लेबर का अंतर था। यानी अगर उस समय पुरुष मजदूर 3 रुपए लेता था डेली, तो स्त्री जो है 2 रुपए लेती थी। क्यों? काम बराबर करते थे दोनों। वही मैं कह रहा हूं, वो डिफरेंस आज भी है, आज भी है। सो लो वेजेस हैं, जिसके कारण उसके अंदर वो पावर नहीं आ सकती। जब इकोनॉमिक पावर नहीं है तो वो पॉलिटिकल अवेकनिंग और पॉलिटिकल पावर भी नहीं आ सकती। सो ये सारी फैक्टर्स हैं जो अति आवश्यक हैं। हम अगर चाहते हैं कि विमेन हमारे समाज के अंदर एम्पावर्ड हो, कम से कम इक्वल तो हो ही सही, अगर हमारे से ऊंची ना हो तो बराबर तो हो। दैट इज व्हाट आई हैव टू से अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, एंड देन स्टार्ट्स योर मेडिटेशन। ओके, थैंक यू।